تو پہلے آیتوں کا خلاصہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دنیا کی ترقی کا سمبل بنا کر یہاں پیش کیا. تھوڑی سی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت سمجھ لیجئے کہ جب وہ لوگوں کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے ہو. اللہ نے دنیا میں نبیوں کو ایک رحمت بنا کے بھیجا اور ہر نبی کے ذریعے سے مختلف طرح کی نعمتوں کو لوگوں تک پہنچایا. نہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ جاؤ اور کوشش نہ کرو اور آسمان پہ کمندے نہ ڈالو اور ستاروں کی طرف جاؤ ہی نہ, پھر تو دنیا بند ہو گئی. بار بار ہم قرآن میں پڑھتے ہیں دیکھو کشتیوں کی طرف کیسے چلتی ہیں. اگر مسلمان صرف بیٹھ کر نماز روزہ کرتے رہتے تو سمندروں میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹھ جاؤ, کیوں مرو جا کے, کیوں اپنے آپ کو رسک میں ڈالو, ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. نہیں, کیونکہ پچھلی آیت میں اگر آپ دیکھیں نا, عبدم منیب, رجوع کرنے والا بندہ, جب تک اللہ کی طرف بار بار نہیں پلٹیں گے اللہ کی کائنات پہ غور و فکر نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ کا بندہ حضرت داؤد علیہ السلام, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا. کون تھے حضرت داؤد؟ اللہ کے نبی بھی تھے اور چنے ہوئے بندے بھی تھے اور اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے. دوسرے پارے میں تالوت اور جالوت کے قصے میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت داؤد بالکل ایک عام درجے کے سپاہی تھے, لیکن کبھی کبھی موقع ایسے آ جاتے ہیں زندگی میں کہ جس کو استعمال کر لیا جائے تو انسان افق کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے, اور یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. مخالف قوم کا جو بادشاہ تھا, جالوت اس کا نام تھا, حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ مارا گیا. جب وہ مارا گیا تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ترقیوں کے راستے کھولے. تالوت جو نبی بھی تھے, بادشاہ تھے اپنے دور کے مسلمانوں کے, انہوں نے ان کو چنا, ان کو اپنے کاموں میں شامل کیا, بعد میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے جب کر دیا تو اس کے نتیجے میں پھر یہ نبوت میں بھی آگے, بادشاہت میں بھی تھے. حکمت بہت تھی, اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کا تحفہ یہ دیا کہ پھر یہ مسلمانوں کے لیے بہترین قسم کے بادشاہ بھی ثابت ہوئے, اور نبوت کے سلسلے میں بھی تقویٰ بھرا ہے. کچھ چیزیں انشاءاللہ ان کی زندگی کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, لیکن یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ 1000 قبل مسیح کی شخصیت ہے. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے دین پہ تھے, لیکن حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے تقریباً 1000 سال پہلے کا ان کا دور تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو انیوژل نعمتیں دی تھی. ان میں سے ایک نعمت کیا تھی جس کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ منا فضلہ کی صورت میں ہم نے ان پر فضل کیا. دیکھیے فضل لفظ کو سمجھ جائیں گے تو بہت کچھ سمجھ جائیں گے. فضل کہتے ہیں زائدہ ضرورت کو. احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, زائدہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اور لائک دس. تو فضل وہ چیز ہے کہ جو اللہ اپنی رحمت سے کسی کو دے دے, ٹھیک ہے, اس کا حق نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے عام لوگوں کو دینے کی, تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مور دین ایکسٹرا. مثلاً اللہ نے سب کو نعمتیں دی, آنکھیں دی, کان دیے, سماعت بصارت دی, لیکن انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی مرضی ہے. اگر فائدہ اٹھا لیتا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا, لیکن کسی کو اللہ بہت اچھی سماعت دے دیتا ہے. ایسے بات سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کے کان میں بھی کوئی کرے تو بات سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ ایک خاص قسم کی کوئی خوبی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ نے ان کو دی, فضل کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب کیا فضل تھا اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی میں. یا جبالو, اے پہاڑوں, اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب بھی تسبیح کرو ماہو اس کے ساتھ, وہ تیرا اور پرندوں کو بھی. یعنی ہم نے حکم دیا اے پہاڑو تم تسبیح کو دہراؤ ان کے ساتھ بھی اور پرندوں کو بھی, یہی حکم دیا. لفظ اب بھی کو سمجھیے, لوگوں نے اس کی بڑی تعویل کر کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی. اب بھی کا لفظ جو ہے نا اوب سے, اور اوب کہتے ہیں کسی چیز کو دہرانا. یہ جو لفظ ہے نا توبہ, وہ بھی اسی سے ہی ہے. آئی بون تائی بون کا لفظ آپ پڑھیں گے تو دونوں ہی لفظ اس میں آتے ہیں. آئی بون تائی بون عابدون علی ربنا حامدون, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں سے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ کس طرح کر دیا تھا؟ یہاں یہ معنی کس میں آتا ہے؟ وی بی میں, دہرانا. انگلش میں ایک لفظ بولتے ہیں کورس, کورس میں بولنا, یہ وہ معنی ہے. यहाँ एको नहीं, दो लफ्ज लिख लें कि अव्वबी से यहां मुराद तस्बी को दोहराना, यानी कोरस में बोलो लेकिन इससे मुराद गूंज नहीं है, या इससे मुराद ये नहीं है कि जो बात कही उसी को दोबारा वो रिफ्लेक्स जो बोलते हैं। वरना आप देखिए कि ये कौन सी खूबी है, बाज़ लोग जिनके दिमाग बहुत ही ज्यादा दूसरों से मुतासिर थे, उन्होंने इन आयतों में क्या देखा, हो पहाड़ बोलेंगे, ये तो हो नहीं सकता, साइंस कहती है पहाड़ नहीं बोल सकते, मौजज़ों का इनकार किया। और उन्होंने कहा अच्छा नहीं नहीं इसका मतलब ये था कि हजरत दाऊद जब पहाड़ में जाके पढ़ते थे तो वो एको की सूरत में वो आवाज़ पलटती थी। जी जी और वही लफ्ज़ होता है, देखिए एक लफ्ज़ के कितने डिफरेंट एंगल्स हैं, बाब होते हैं अरबी ज़बान में, 9 डिफरेंट बाब है, हर बाब में चीज़ जाती है, मानी बदलता है। ये जो अव्वाब का लफ्ज़ है वो भी इसी से ही है, आए बून ताए बून अव्वबी तव्वाबून, ये सब एक ही खानदान के घर हैं जिसमें झुकाव भी है, दोहराने का मन ही आ गया। यानी बस अब ये समझ लें कि यहाँ ये तावील की लोगों ने कि ये पहाड़ इनके साथ गूंजते थे, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो मैं भी जाके पढ़ लूंगी तो ऐसे ही होगा, आप भी बोलेंगे तो ऐसे ही होगा, तो ये हकीकत में हुआ। ये कैसे हुआ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, ठीक है। अब इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, बाज़ मुफसरीन ने कहा कि इनको खूबसूरत आवाज़ दी गई थी और इनकी आवाज़ ये थी कि जब ये अल्लाह की तस्बीह पढ़ते तो पत्थर के जो ठोस पहाड़ थे वो भी तस्बीह खानी में मुबतला हो जाते। अब कैसे होते थे हमें नहीं पता, ये मेरी और आपकी जुबान कैसे बोलती है, इतना सा गोश्त का टुकड़ा है, आप चाहें तो इसको बुलवा सकते हैं, नेवर, कभी भी नहीं। तो जो अल्लाह इस एक गोश्त के टुकड़े से बुलवा सकता है, क्या वो पहाड़ों से नहीं बुला सकता। रिवायात में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो नबूवत से पहले मुझे सलाम करता था, तो फिर अब वो कैसे करता था, मौजज़ात होते हैं नबियों के साथ, अल्लाह ने दी, और याद रखिए ये अल्लाह ने किया था, हजरत दाऊद की कुदरत नहीं थी, ठीक है। एक और इसकी तफसीर की गई, इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि जब ये कुरान पढ़ते या अल्लाह की हम्द करते वहाँ, और जबूर जो थी वो हमदिया तराने थे, यानी मेलोडी थी इनकी आवाज़ में, तो उड़ते उड़ते परिंदे ठहर जाते और इनके साथ वो भी गुनगुनाने लगते, ठीक है, ये भी एक मानी है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें आप अगर इस असल देखें ना, तो असल इबारत कैसे बनती है, ना दई नल जिबाल अब तैरा, हमने पुकारा पहाड़ों को और परिंदों को, फिर कहा कि तुम इसके साथ झुकाओ। बहरहाल ये एक अनयूजल नेमत थी अल्लाह ताला ने जो दीन को, उसका जिक्र फरमा दिया, ठीक है। अगर आप अभी भी को मुश्किल लफ्ज में बोले ना, तो इसको तरजीह कहते हैं, आप में से किसी ने तजवीद पढ़ते हुए तरजीह का लफ्ज कभी सुना, तरजी रजा से आवाज का पलट कर आना, जो बहुत ज्यादा ठोस लैंग्वेज में तजवीज सिखाते हैं ना, तो वो ये तरजी का लफ्ज बहुत बोलते हैं, तरजी रजा से, यानी तुम वापस निकालो आवाज को, लौटाना और दोहराना। तो ये वही मानी है कि जैसे कोई नज्म या गजल कोई पढ़ता है तो बाद में लोग उसके आवाज में आवाज लगाकर गुनगुनाने लगते हैं। खैर, दूसरा अमल, व अलन्ना लहुल हदीद, और हमने नरम कर दिया इसके लिए लोहे को। अलन्ना का रूट क्या होगा, सब बोल दें, लयन, लाम या नून से, ये वही लफ्ज़ है जो अरबी में आप लोग हरूफे लीन, तजवीद में हरूफे लीन से पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला के नबी के लिए सूरत आले इमरान में हम पढ़ चुके, फबिमा रहमते मिनल्लाही लिन्त लहुम, सूरत हशर में हम पढ़ेंगे मिल लीना, लीना कहते हैं खजूर के नरम गोशे को, कच्चा कच्चा जो होता है ना उसको, तो बस नरमी का मानी है, नरम कर दिया हमने उनके लिए लोहे को। अब ये लोहा इनके लिए कैसे नरम हुआ था, एक तो बात है जो इसकी भी मुख्तलिफ तफसीरें हैं, पहली बात यह है कि जिस तरह बच्चे प्लेडोस को जैसे करते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ कोई खेलता है कुछ, तो उस तरह वो कहते हैं कि इनके हाथ में लोहा इस तरह नरम हो जाता था कि जिधर मोड़ते थे अल्लाह के हुक्म से वो मुड़ जाता था, और अल्लाह कर सकता है। जैसे बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जैसे मोम है ना, वो कभी उसको ज़रा सा गर्म करें तो नरम होती, तो इनके हाथों में अल्लाह ने ऐसी गर्मी रखी थी कि वो मोम की तरफ नरम होते, और बगैर आलात और हथौड़ों के इस्तेमाल के ये इस तरह से बना दिया करते थे, जिरे बनाते थे, ठीक है। पीछे हमें एक और जगह पढ़ चुके, वालम ना हुसन तल्लबू सिल्लकुम, हमने उनको सिखा दी लिबास बनाने की सनत, ठीक है। फिर आगे भी आ रहा है, आगे वक़द्दिर फिस सर्दी, उससे भी जंजीर बनाने की तरफ इशारा है। तो गोया के ये बनाते थे लोहे को, इनको नरम किया, बस कहते नहीं, लोहे को पिघलाने का अमल सबसे पहले अल्लाह ताला ने इनको सिखाया, इसकी भी गुंजाइश है, नो प्रॉब्लम, हमें से क्या लगे, वो हाथों में लेके करते थे वो नहीं, मेरे और आपके अमल की नहीं बात, हम तो ये देख रहे हैं कि अल्लाह ने उनको फदल दिया था। तो लिहाजा अगली चीज में क्या फरमाया, वलन लहुल हदीदा انعمل سابغاتم وقدر فی السردی، کہ تم لوہے کو نرم کرنے کے بعد تم اس سے کیا کرو، بناؤ تم سابغات. سابغات کا جو لفظ ہے نا صبغتن سے ہے، یہ وہ سوات نہیں ہے، اگر آپ غلطی نہ کھا جائیں، وہ صبغہ تھا سوات سے. یہاں سابغات صبغتن کی جمع ہے، اور یہ صبغہ کیا ہوگا؟ جی بتائیے کیا سمجھ آ رہا ہے اس کو پڑھ کر؟ زرہے، جو لمبی زرہ نہیں ہوتی، عرب لوگ دشمن سے بچنے کے لیے ایک لباس پہنتے ہیں جو زنجیریاں ہوتی ہیں. کبھی پرانی تاریخی ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا زنجیریوں سے بنا ہوا ایک لباس ہوتا ہے، اور لوگ اس کو پہنتے ہیں اور وہ پھر ہلتی رہتی ہے، اور دشمن اگر تلوار یا تیر مارتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں ایک قسم کی ڈال بن جاتی ہے، وہی اس سے مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کا ذکر کر دیا کہ ہم نے ان کو اس طرح کے لباس بنانے کی دی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سابغات محذوف موصوف کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تھوڑی سی ایسے مشکل لفظ ہیں اس میں جو لگ رہے ہیں، لیکن عمل کی بات سمجھ جائیں گے تو بھی کافی ہے. کہ ہم نے ان سے کہا کہ پوری پوری زرہے بناؤ، وقدر فی السردی، اور جوڑوں میں اندازہ رکھو. یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، یعنی ایک ہاتھ سے بناؤ، یعنی کہ ایک کنڈا بڑا تو ایک چھوٹا. سرد جو لفظ ہے سردی، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ جیسے زنجیریوں کو جوڑتے ہیں نا تو ایک کے بیچ میں دوسری پرو دیتے ہیں، اسی طرح کا یہ لفظ ہے کہ صنعت کے وقت جب مختلف چیزوں کو جوڑا جاتا ہے تو مراد ہے کہ خوبصورت طریقے سے کام کرو. مفسرین کہتے ہیں کہ اسے ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورت کام پسند ہے. لفظی معنی سرد کا سوراخ کرنا ہوتا ہے، یعنی سوراخ کرتے تھے، پھر اس میں چین ڈالتے تھے، پھر دوسری کرتے تھے، پھر تیسری کرتے تھے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک نعمت تھی. قدر سے تقدیر کا لفظ ہے، اندازوں سے کرو. آج ہم دین کے کام کو بھونڈے طریقے سے کرنا تقوی سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں چونکہ ہم متقی بہت ہیں اس لیے بس ہم چل چلاؤ کا کام کرتے ہیں. نہیں، فرمایا کہ ظاہری خوش نمائی اس ایک آیت سے سمجھ آتی ہے. اللہ نے ایک نبی کی صفت جب یہ لکھی ہے قدر فی سردی، تو پھر دین کے کام میں ظاہری خوش نمائی بھی ہونی چاہیے. یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں سے دو چار چیزیں پتہ چلتی ہیں، ساتھ ساتھ ہی نوٹ کیجئے. نمبر ایک، صنعت و حرفت کی اہمیت. مختلف پیشے اللہ کو پسندیدہ ہیں. سارے نبی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے اور اس کو پسند کرتے تھے، جیسے حضرت نوح کا ذکر ہم نے پیچھے پڑھا سورت خود میں، بس نا الفل کبھی آیونی نہ، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، وہاں بھی لفظ صنعت تھا. حضرت ادریس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑا بنتے تھے، تو محنت کرتے تھے. یہاں سے آپ دیکھیے اسلام کا مزاج سمجھیے. آج ہم مسلمانوں کے ڈکلائن ہونے کی وجہ ہم نے محنت چھوڑ دی ہے. ہم قدر فی سرد نہیں کرتے، اور وہ کام کر لیتے ہیں جو بس وقتی طور پہ ضرورت ہوتی ہے اور دیٹس اٹ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو محنتی پسند ہے، کام کو ایکسیلنٹ کر رہا طریقے سے. کیوں ہمارے ملکوں میں یہ معروف ہے کہ مثال ہے کوئی سنک لے رہا ہے یا کوئی جس طرح آپ کے ٹیبز لے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نہیں پاکستانی نہیں لو، تھوڑے چھ مہینوں کے بعد ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، امپورٹڈ لے لو ایک دفعہ مہنگی. سنیے نا اپنی یہ باتیں ہر چیز میں، کپڑا لے لو، جاپانی لے لو، اب تو وہ ختم ہی ہوگی بات. ایک دور تھا کہتے ہیں جاپانی کپڑا بہت دیر تک چلتا ہے، پاکستانی کپڑا اس پہ بور آ جائے گی، چھیریں پڑ جائیں گی اور اس ڈھیلا ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ قدر فی سرد. یہ گورے اگر ایک پاؤنڈ کی بھی چیز بناتے ہیں تو اس کو اس کی ایکسیلنسی کے درجے پہ کر دیں گے، چاہے اس کی قیمت کے اندر رکھتے ہوئے کریں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک سیمپل اور ہے تو باقی چیزیں دوسری طرف ہیں، تو یہاں سے یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے. پھر ایک اور چیز اس میں کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے نبیوں کو یہ چیزیں سکھاتا تھا، تو یہ چیزیں انسان کے لیے پسند ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جو ضروری صنعتیں ہیں، مثلا مکان بنانا، کپڑا بننا، درخت اگانا اور کھانے کی چیزیں تیار کرنا، حمل و نقل یعنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو پہیے ہیں ان کی گاڑیاں چلانا، یہ سب صنعتیں اللہ نے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے سکھائی تھی. کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے نا کہ یہ سب سے پہلے کیسے آ گئیں، پہلی دفعہ کس کو خیال آ گیا تھا. ایک اور چیز جان سے سمجھیے کہ کسی صنعت پیشہ شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ گجر ہے، یہ دھوبی ہیں، تو کیا ہوا؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے آج ہم آ رہے تھے، ہم کتنی دیر اسٹاک رہے بیچ میں کہ ہمارے آگے وہ کچرا اٹھانے والی گاڑی تھی، تو وہ جس گھر میں رک رہی تھی وہ ہم بھی ساتھ رک رہے تھے، اور میں دیکھ رہی تھی کس طرح ان کی گاڑیاں، یعنی وہ وہاں سے گاڑی مشین کے ذریعے وہ ڈبا اٹھاتے ہیں، پھر اس کا ڈھکن کھلتا ہے، پھر اس میں گرتی ہے، پھر اس کو واپس رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. चल रहे, और हर हफ्ते आप देखते होंगे घरों के बाहर से वैसे कचरा उठा रहे हैं ना, तो मैं उसी पे कमेंट कर रही थी कि देखे इनको कचरा उठाना आता है, हम मुसलमानों को इखलाकी कचरा नहीं उठाना आता। ऑर्गेनाइज होके कर रहे हैं ना, मिल के टीम वर्क के साथ कर रहे हैं, तो हर गली साफ है, हर घर का कचरा उठ रहा है, और अपनी मर्जी, सर धाड़ मुंह फाड़, जिसकी लाठी उसकी। मैं, हम जिस तरह दीन के काम करने के आदमी हैं, अगर वैसे ही कर रहे होते, पता चला एक घर में गाड़ी दो दफा भेज दी है और दूसरे घर गए ही नहीं, ना कोई रैकेट ना हिसाब, यानी भोंडे तरीके से हम दीन का भी काम करते हैं। मैंने कहा कि ये जिस तरह सड़क से कचरा उठा रहे हैं तो शहर साफ है, अगर हम मुसलमानों ने इस तरह मुआशरती गंदगी, अखलाकी गंदगी उठाई होती तो आज दुनिया में इतनी करप्शन ना होती। आज हम खुद को जिम्मेदार समझें, हम मुसलमानों ने वो काम छोड़ा हुआ है जो हमें करने की जरूरत थी। तो मैं उस वक्त यही सोच रही थी जो मेरा दिमाग चल रहा था, क्योंकि इंसान देखता है तो कुछ सोचता है। मैं सोच रही थी ये लंदन की सड़क से कचरा उठा रहा है आदमी, इसको क्या आप कहेंगे, क्लीनिंग कंपनी, कुछ भी इसका इंग्लिश का नाम रखें। हमारे मुल्क में ऐसे क्या कहते हैं, जमादार, चूड़े, चमार, वो गंदगी उठाए। यहां लोग बाथरूम भी साफ करें तो बाइज्जत, और हमारे मुल्कों में कोई ऐसे काम सोच सकता है? और हमारे अपने भाई बहन बेचारे जब गरीब, यानी ऐसे वीजों पे या ऐसी कम स्किल्स के साथ आते हैं, तो इन मुल्कों में आके सफाइयां भी करते हैं, बैरे भी बनते हैं, यहां कर लेते हैं, अपने मुल्क में नहीं करते। वो कहते हैं लो हम रेड़ी लगाएं। यहां आप मॉल में रेड़ी नहीं लगाते, ये रेड़ी तो होती है, ये जो आप मॉल के बीच में देखते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग, ट्रॉली लेते हैं कुछ भी, तो पंजाबी में उसको आप रेड़ी कहते हैं या उर्दू में रेड़ी कहते हैं। यहां लगा के आप खुश हैं, ठेला कह देते हैं, रेड़ी वान कह देते हैं या ठेला वाला कह देते हैं। तो याद रखिए मेहनती अल्लाह को पसंद है, कोई पेशा बुरा नहीं, किसी पेशे को हकीर ना जानिए। और ये हिंदुस्तान में जब मुसलमान और हिंदू इकट्ठे थे उस दौर में ये कॉम्प्लेक्सेस सारे पैदा किए गए थे। फिर इसी तरह एक और सवाल पैदा होता है कि हजरत दाऊद को जरा क्यों सिखाई अल्लाह ने बनानी, इसके बारे में एक रिवायत सुन लीजिए। इमाम इब्ने कसीर ये रिवायत हाफिज बिन इसाकर से लाते हैं, कहते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत और सल्तनत के जमाने में भेस बदल कर बाजारों में जाते और मुख्तलिफ तरफ से आने वाले लोगों से पूछा करते, दाऊद कैसा आदमी है। नोट कीजिए, लीडर बनना कोई आसान काम नहीं है, उसको हर चीज पे नजर रखनी पड़ती है। खुद लोगों को इतना नजर भी तो नहीं आता होगा ना, क्योंकि तस्वीरें तो नहीं होती थी इनकी, हर एक ने ना बादशाह देखे हुए थे ना वजीर देखे हुए थे, तो ये लोगों से राय लेते थे, फीडबैक लेते थे कि बताओ भाई दाऊद कैसा है, तो हर बंदा इनकी तारीफ करता। अब उनको ये तो नहीं पता था, तो चूंकि अदल और इंसाफ था, ऐश के साथ लोग गुजार रहे थे, किसी को कोई सवाल नहीं था, तो कहते जिससे वो सवाल करते तो हजरत दाऊद की मदा और सना और अदल और इंसाफ वो करते, तो इस पर फिर ये सारे तशक्कुर करते। एक दिन अल्लाह ताला ने इनको सिखाने के लिए एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा। जब दाऊद अलैहिस्सलाम इस काम के लिए निकले तो फरिश्ता इनसे मिला, हस्बे आदत इससे भी वही सवाल किया। फरिश्ते ने जवाब दिया, दाऊद बहुत अच्छा आदमी है और सब आदमियों से वो अपने नफ्स के लिए भी और अपनी उम्मत और रैयत के लिए भी बेहतर है, हाँ मगर एक ऐसी आदत है वो ना होती तो वो कामिल होता, और याद रखिए कामिल कोई हो नहीं सकता। हजरत दाऊद ने पूछा, अच्छा वो क्या आदत है। फरिश्ते ने कहा कि वो अपना खाना पीना और अपने अहलोयाल का गुजारा मुसलमानों के बैतुल माल से लेते हैं। ये सुनकर हजरत दाऊद ने अल्लाह ताला की तरफ इल्हाह और जारी और दुआ का इख्तमाम किया, क्या मुझे लेना पड़ता है, तो मुझे कोई ऐसा काम सिखा कि मैं अपने हाथ की मजदूरी से पूरा करूं और उसकी उजरत से अपने घर वालों का गुजारा करूं। इमेजिन कर सकते हैं, बादशाह का ये गम हो, हम तो वजीरों का भी ये गम नहीं देख सकते, कहां बादशाह, वजीर आजम आज के दौर का नाम ले लीजिए। खैर, कहता है कि उस पर फिर अल्लाह ने उनको लोहे को नरम करके उससे पिघला के ये बनाने की सनत सिखा दी, ताकि वो थोड़ा वक्त काम करें और बाकी वक्त इबादत और अमूरे सल्तनत में लगा दें। यहाँ से एक मसला भी बयान किया गया कि लोगों को कमाने के दौरान इतना वक्त जरूर निकालना चाहिए कि उनकी इबादत भी हो। हजरत दाऊद ने अपने वक्त के, ये जो कद्दर फिर सर्द है ना, इसकी एक तफसीर मैंने ये भी पढ़ी थी कि ये अपने औकात को तीन हिस्सों में बांट लेते थे, एक वक्त कमाने का, खाने का, जरूरियात जिंदगी का, और दूसरा जो है वो आराम का, और तीसरा इबादत का। तो टाइम मैनेजमेंट हमें अंबिया कराम से सीखती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये सारी चीज़ें करके अब इसके बाद अल्लाह ताला ने इनकी कुछ और चीज़ों को भी हमारे सामने रखा, और वो क्या है, आगे भी इनका जिक्र आएगा। अब ये जो आखिरी सूरतें हमें पढ़ रहे हैं ना, चूंकि ये एक ही दौर की हैं, तो इसमें आपको इनकी, हज़रत सुलेमान और दाऊद की, दोनों की मुख्तलिफ चीज़ें और भी ज़्यादा दिखती हैं। लेकिन यहाँ ये बात करके फरमाया, वामलु सालेहन, और नेक अमल करो, इन्नी बिमा तामलू न बसीर, मैं उन सब चीज़ों को जो तुम करते हो वो यकीनन देख रहा हूँ, यानी इन नेमतों का सही फायदा उठाओ। दुआ कीजिए कि आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल हो जाए कि वो नेमतों से सही फ़ायदा उठाए। हमारा हाल क्या है, दीनदार तबके की एक पिछले दौर की सोच मुझे याद आ रही है, मैंने अपने वालिद और बड़ों से सुनी है। कहते हैं जब पहली दफ़ा रेडियो ईजाद हुआ था तो मौलवियों ने फतवा दे दिया था कि जिस घर में रेडियो होगा उस घर में नमाज नहीं हो सकती और रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। लोग रेडियो रखते थे, छुपा के रखते थे, पहले होता भी इतना बड़ा था वो छुपता भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जब टीवी आ गया तो रेडियो जायज़ हो गया, कहा टीवी में तो अब तस्वीर आती है तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। फिर उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी लाशौर में बिल्कुल छोटे थे हम लोग, और मेरा अल्लाह माफ़ करे, पहला हमारे ही घर में VCR आया था। VCR वो होता है जिसमें आप अपनी मर्जी से फिल्में देख लेते थे। VCR को उस दौर के उलमा ने इतना बुरा भला कहा कि लोग जो ऐसी चीज़ें यूज़ भी करते थे उसको छुपा के रखते थे कि कोई दीनदार हमारे घर आ गया तो वो फतवा ना दे दें। अब यही फतवे सेलफोन के हैं, ये फतवे एप्पल आईफोन आईपैड ऐड के हैं। क्या इस्लाम इन चीज़ों को पसंद नहीं करता? किसी का एक आर्टिकल सुन रही थी कि सेलफोन के खिलाफ, उन्होंने कहा सेलफोनों को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, इन्होंने हमारी नस्लें खा ली, फरमाया ये कर दिया वो। अब मुझे बताइए सेलफोन का कोई एक फ़ायदा भी है आपके पास? पहले लोग किसी से कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते थे, अब तो घर में मासियों को मैंने औरतों को देखा फ़ोन करती हैं बेगमत कि मासी किधर हो, जल्दी पहुँचो। किसी ने अगर आपका गटर खोलने आना था, भाई किधर हैं आप, जल्दी आइए। फ़ायदा है कि नहीं? वहाँ मलू सालेहन, अपनी नस्लों की तरबियत ऐसी करें, अपने मर्दों को ऐसा पाक करें, अपनी सोच पाकीज़ा करें कि वो इन नेमतों से अच्छा फ़ायदा उठाएं। इस्लाम हट धर्म होने से नहीं सिखाता हमें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, नेमते लो। जब हमने ये सब छोड़ा, कद्दिर फिर सर छोड़ा, तो अल्लाह ताला ने दूसरों को वो जगह दे दी। तो लिहाजा हम ऐसी चीज़ों से पीछे हो गए, दूसरे आ गए, आज हम उनके हाथों से लेने को मजबूर हैं। भारी शर्तों पर उनके कर्जे लेते हैं, उनसे वेपन्स लेने हम ले रहे हैं, खुद जू नहीं करते। कहनी भी मा तामलू ना बसीर, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम कर रहे हो। ये तो बाप का हाल था, हमें इसे यकीनन अपने लिए अमल लेना है कि अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करो। खराबी वही है जो मैंने सूरत के इंट्रो में आपको बताई थी, वो जुमला दोहरा देती हूँ। जब लोग नेमतों से फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और नेमतें देने वाले को भूल जाते हैं तो नेमत ज़हमत बन जाती है। नेमतें ले और नेमते देने वालों से ताल्लुक अच्छा रखे। इसकी मिसाल में अब आगे आपको हजरत सुलेमान का किस्सा मिल रहा है। वली सुलेमान रीहा, और सुलेमान के लिए हवा को क्या किया जो पीछे बाप के साथ हुआ था, क्या मुसख़र कर दिया। गुदुबुहा शहरुं व रवाहुहा शहरुं, उसका सुबह को चलना भी एक महीने का सफर था और शाम को चलना भी एक महीने का सफर था। वही बात जो पहले भी बताइए, गदूब कहते हैं एम्स को सुबह को और हवा शाम को, यानी पीएम्स, यानी सुलेमान के लिए हवा मुसख़र थी, जहाँ जाना चाहते तेज़ हवा आपके तख्त को उड़ाकर वहाँ पहुँचा देती। और उस ज़माने के दौर के मुताबिक जो सफ़र एक महीने में तय होता था वो हज़रत सुलेमान एक सुबह से या एक शाम से सुबह तक कर लेते थे, यानी 12 घंटे में कर लेते थे। आज ऐसा हो सकता है? जहाज़ को देखे तो यकीन आता है कि ये कैसे चल रहा है। जहाज़ में तो शायद कहते हैं कि एक सुराख की भी खिड़की खुल जाए या सुराख हो जाए तो जहाज़ गिर जाएगा बाहर के एयर प्रेशर से, और हज़रत सुलेमान हवाओं के ऊपर खुले तख्त में जाते थे। वो बचपन में अल्लाह फ़लाला कहानियाँ देखी होंगी, तख्त उड़ रहा है और वो कालीन के ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं। आज कहते हैं ओपन एयर में चल ही नहीं सकते। अल्लाह ने देखिए नबियों को हवाओं में चला दिया। मैं कभी सोचती हूँ कि हम सारी चीज़ों से बेनियाज होकर बैठ के ज़रा अल्लाह के मिजाज को समझें। अफसोस की बात है, दीन सीख कर भी हमें अल्लाह का मिजाज समझ नहीं आता। एक खौल है ऊपर हमारे दीन का, हमने सिर्फ इबादत की चंद शिकों को पकड़कर आज उम्मत को मुश्किल में डाला हुआ है। आज अगर ये सब कुछ साथ चले, रिसर्च वर्क, एक शख्स है कहता है मैं लैब में काम कर रहा हूँ, अच्छा नमाज का वक्त हो गया मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। एक शख्स है वो स्काई स्क्रैबर में काम कर रहा है, उसको कोई शटल बनानी है, अच्छा हैया अलैहिस्सलाम या फला, ओके लोगों मैं 5 मिनट में आता हूँ नमाज पढ़ता हूँ। जब ये कॉम्बिनेशन होगा ना, फिर दुनिया पे ला इलाहा इल्लल्लाह हु अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल खुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून। आज ये सबक हम भूल गए, हम खुद भी सुस्त हो गए, हमने सारा इल्ज़ाम गोरों पे डाल दिया, काफरों पे डाल दिया, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। फिर दूसरी नेमत बेटे को जो मिली, वसलना लहू ऐनल क़त्र, और हमने इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी किया। असलना का लफ्ज़ कभी पीछे आपने पढ़ा? देखिए सैल, सैलाब, पानी का बहना, वही लफ्ज़ है। बहा दिया हमने ऐन कहते हैं चश्मे को, क़त्र कहते हैं तांबे को, पिघला हुआ तांबा। बाप के लिए अल्लाह ने क्या किया था? लोहा नरम किया, तो बेटे के लिए तांबा, बड़ी बड़ी कॉपर्स हैं। और आज देखिए पूरी इंडस्ट्री इस पे चल रही है, स्टील मिल देख लीजिए पाकिस्तान की, और आयरन स्मिथ्स को देख लीजिए, आज जितना आयरन लोहा फौलाद यूज हो रहा है घरों में, बिल्डिंग्स में, पिलर्स में, ये सब अल्लाह ने इन बाप बेटों के जरिए हमें सिखा दिया। आप कहते हैं नबी बैठ के तस्बीहां पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चुप करो बोलना नहीं, मैंने 1000 दफ़ा पढ़नी है, बीच में ना आना, मैंने वजीफा शुरू। मुझे तो यकीन करें, मैं अपने दिल की बात कहने लगी हूँ, सीरत पढ़ी है तो मुझे अल्लाह के नबी इंसान लगे हैं, और अब ये वाक्यात नबियों के पढ़ रही हूँ ना, तो ये नबी अपने जैसे चलते फिरते खाते पीते इंसान, लेकिन एक्टिवेटेड मोटिवेटेड। उनका सबसे बड़ा हम और गम रिस्क नहीं था। हम अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं ना तो रिस्क मुआश की उम्मीदों पर, हमने उनसे उम्मीदें लगाई हुई, इनका कैरियर बनाना है, खाक ये पढ़ेंगे, ये कहाँ रिसर्च के लिए पढ़ेंगे, ये कहाँ कुर्ब के लिए पढ़ेंगे अल्लाह के। जब तक लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए दुनिया का इल्म नहीं देंगे, आपके बच्चे आपकी आंखों की ठंडक नहीं बनेंगे। हम उनकी तालीम पे लाखों लगाते हैं, हम उनकी शादियों पे लाखों लगाते हैं, लेकिन हम उनके दीन पे कितना लगाते हैं? हम कितनी सोचों में पड़ जाते हैं अगर हमें अपने बच्चे को 4 साल जरा मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजना पड़े। हम कहते हैं हाय कैसे जाएंगे, क्या होगा, बड़ा मुश्किल है, और उसके बाद जॉब भी क्या मिलनी है। अच्छा, हम 1-1.5 साल का ये कोर्स करें, ये बताएं कि इस कोर्स के सर्टिफिकेट की बेस पे कोई जॉब मिल जाती है क्या, ये सर्टिफाइड है? हमारा हाल तो ये है। उधर अल्लाह देखिए क्या बड़े बड़े काम उनसे ले रहा है कि पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। और फिर तीसरी चीज, वह मिनल जिन्नी, जिन थे, मैं या मलू बई न यदई ही बेजनी रबी, कुछ जिन इनके ताबे कर दिए जो इसके सामने वो काम भी करते थे जो इसके रब के हुक्म से थे। जिन्नों को ताबे कर लिया, किसके हुक्म से था? याद रखिए, जिन सुलेमान के ताबे थे लेकिन अल्लाह के हुक्म से। सुलेमान के हाथों में ये ताकत नहीं थी कि वो जिन्नों को ताबे करे। अब यहां एक मसला उठता है कि क्या जिन्नों को काबू किया जा सकता है? भाई आप बच्चों को और मियाँ को ही काबू कर लें यही बहुत है, और आज के मियाँ बीवी बच्चों को ही काबू कर लें यही बहुत बड़ी बात है, हा? तो इस पे बहुत लंबी बहसें हैं, जिसका जरूर, अगर आप में से किसी को जिन काबू करने हैं तो आप मेरे से आके मशवरा कर लें, मैं आपको कुछ चीज़ रिकमेंड कर दूंगी। लेकिन ये याद रखिए, ये इल्म है, पसंदीदा नहीं है। दूसरी बात है कि हज़रत सुलेमान ने जिन्नों को अगर मुसख़र किया था तो उसके लिए शिरकिया जंतर मंतर नहीं पड़े थे। तीसरी बात है कि अगर हजरत सुलेमान ने जिन्नों को काबू किया था तो उसके जरिए से शौहर बीवी के जादू नहीं करवाते थे, नुकसान नहीं देते। उन्होंने उन जिन्नों से क्या किया था, आगे इसी किस्से में हम पढ़ेंगे तो आप इंजॉय करेंगे, बहुत बड़े बड़े काम कराते थे। वमई यज़िक मिनहुम अन अमरीना नुज़िक्हु मिन अज़ाबिस सईर, इनमें से जो कोई भी हमारे हुक्म से सरताबी करता इसे हम जला देने वाला अजाब चखाते थे। यानी हजरत सुलेमान के हाथों में जिन इस तरह काबू थे कि जिन जरा कोई कमी पेशी करते तो अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान की तरफ से उनको मार पड़ती थी। अब वो काम क्या करते थे, पहले हिंट दिया, अब आयत 13 से आगे उनका जिक्र है, करते क्या थे वो जिन्नात उनके लिए। लिख लीजिए आयत 13 से पहले, हजरत सुलेमान जिन्नों से क्या काम लेते थे। नंबर 1, या मलू न लहू मा यशाओ, वो उनके लिए बनाते थे जो वो चाहते थे। क्या चाहते थे? मिम महारीब, बड़ी बड़ी इमारतें। महारीब जो है ना, मेहराब की जमा है। मेहराब शुरू में कहते थे उन हुजरों को जो बनी इसराइल असल इबादत खाने के साथ बनाते थे। इमेजिन कीजिए कि ये मस्जिद है, या आप कह लीजिए कि उनका सिनेगॉग है, जो भी उनका था, इसके साथ इधर छोटे 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 10-12 हुजरे, बिल्कुल ये इतना कुछ छोटा होता था कि जैसे आज के दौर में किसी मस्जिद में इमाम साहब के वो खड़ा होने की जगह नहीं होती आगे, मेंबर कह लीजिए। और करते क्या थे कि लोग इंडिविजुअली, हर बंदा अपने अपने हुजरे में चला जाता था, ये करने के लिए कि हम इबादत तन्हाई में करें, अल्लाह के साथ रखें। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मेहराब हर घर या कमरे के लिए इस्तेमाल होने लगा, तो मुराद ये कि बिल्डिंग्स बनवाते थे। और क्या करते थे वह? तमासील और तमसीलें। तमासील तिमसाल की जमा, मजस्मे बनाते थे। अब ये कौन से थे इस पर हम बाद में बात करेंगे, इसलिए फिक्र ना करें, लेकिन ये जहन में रखिए कि शरीयत मोहम्मदी में मुजस्मे बनाना हराम है। इन अल्फाज से ये पता चलता है, नंबर 1, या तो हजरत सुलेमान के दौर में जायज था। दूसरी बात है कि अरबी जुबान में तिमसाल हर उस शबीह या पैकर को कहते हैं जो कुदरती चीज के मुशाबे बनाया जाए, ख्वाह जानदार हो या बेजानदार। मसलन पहाड़ की तमसील भी हो सकती है, दरिया बहता हुआ, इससे ये नहीं पता चल रहा कि वो इंसानों की तस्वीरें बनाते थे। लेकिन हम इस वजू को बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आयतों को पूरा चेक करते हैं। तमसाल बनाते थे, अगली चीज़ वजीफ़ानिन, कल जवाबी, और तालाबों की मानिंद बड़े बड़े लगन, बहुत बड़े बड़े बर्तन। जैसे आपने कभी पाकिस्तान में मजदूरों को काम करते हुए देखा होगा कि उन्होंने पानी के अंदर ही गहरा सा एक घड़ा सा खोदा होता है और उसके अंदर पानी जमा करते हैं, जिसके अंदर से फिर वो बिल्डिंग के इस्तेमाल के लिए पानी लेते हैं। कभी देखा है ऐसा? इसी तरह बड़े बड़े बर्तन मुराद है, लगन। लगन कहते हैं ना, जैसे टब। आप चले और कुछ ना करें, इसको स्विमिंग पूल समझ लें, स्विमिंग पूल की एक शक्ल की। तालाबों की मानिंद बड़े बड़े बर्तन थे। और वकुदूर रासियात, और वो देगे जो मुसलसल एक जगह पड़ी रहती थी। कुदूर देग, बड़ा सा बर्तन, कुदूर। और रासिया रस्सी से, वही जो लफ्ज रासियात उनसे आता है, यानी एक जगह रखी हुई। कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी देगे होती थी जो चूल्हों के ऊपर ही पड़ी रहती थी, उनको वहां से हटाया नहीं जा सकता था। रिवायत में आता है कि हजरत सुलेमान और दाऊद के पास इतने मेहमान रहते थे हर वक्त कि उनकी एक देग हमेशा पकता रहता था, खाना लोग आते रहते थे और खाना उसमें पकता था। आज भी आपने सुना होगा, अजमेर शरीफ इंडिया का एक शहर है, तो वहाँ एक बुजुर्ग है, उनकी कब्र है, और उसके ऊपर इतनी बड़ी देग है कि जिसके अंदर खाना पकता है और उसको निकालने के लिए सीढ़ी लगा के जाके चढ़ के ऊपर से निकालते हैं। तो पहले दौर में बड़े बड़े बर्तनों का, लगनों का रिवाज था। यहाँ से ये भी पता चलता है कि अगर जरूरत है तो घर में आप बड़े बर्तन देगें ये रख सकते हैं, शर्त ये कि आप उसको इस्तेमाल करें। चीज वो जो रखी रहे, पड़ी रहे, या कभी साल में एक बार हो, वो नहीं, लेकिन ऐसी चीजें जरूरत की इस्तेमाल की इंसान रख सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये सब लेकर करो कि ए मलू आला दाऊद शुक्रा, ये है असल में इस पूरी सूरत का थीम। ए दाऊद के घर वालों, अमल करो शुक्र अदा करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमेशा आपने कुरान में ये पढ़ा है, शुक्र करो, राइट, वशकुरु, लेकिन यहां बिल्कुल यूनिक अंदाज है। और वो क्या है? आले दाऊद, अमल करो शुक्र अदा करते हुए। ये कौन सा शुक्र है, ये कौन सा अमल है, इसको अगर देखना हो तो हमें शुक्र की असल में जाना पड़ेगा। और शुक्र की असल ये है कि एक इंसान अल्लाह की नेमतों को उसके रास्ते में इस्तेमाल करें, जिस तरह वो चाहता है, जो उसको पसंद है, वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। लेकिन अल्लाह ताला पे खुद ही कहते हैं, वकलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, मेरे बंदों में बहुत थोड़े शुक्र वाले हैं। किसी आयत को पढ़कर अगर इंसान शर्मिंदा हो और रोए और एहसास कमतरी का शिकार हो ना, वो ये आयत है। ये ऐसी है कि जैसे शौहर बीवी के मुंह पे आके कह दे तू बड़ी नाशुक्री है, और इसी तरह हर रिश्ते को सोच ले। आप सारे रिश्ते पीछे कर दे, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता बोलिए खालिक और मखलूक का, और खालिक कह रहे मखलूक के बारे में, आबिद और माबूद का रिश्ता, माबूद आबिद के बारे में कह रहे कलीलुम मिन इबादी अश्शकूर। हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत है। लोग नेमतों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बल्कि फॉर ग्रांटेड तो छोड़िए, उनको बोझ लगने लगती हैं वो नेमतें। लोग पहले मांगते हैं वो नेमतें, मिल जाएं तो उनको सहार नहीं सकते। कौन याद आ रहा होगा इस वक्त ये बात कहते हुए मुझे? कौमे समूद, पहले ऊंटनी मांगी नाकतुल्ला, बस ये आ गई तो हम बड़े नेक ये हो जाएंगे, तुझे नबी मान जाएंगे, और आ गई ऊंटनी तो कहेंगे ये पानी बड़ा पीती है, ये चारा बड़ा खा जाती है, ये जहां होती है हमारे जानवर भागते हैं। यानी नेमते मांगते हैं और उसके रास्ते की कुर्बानियों पे फिर हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम कहते हैं हमने क्यों मांगी वो नेमत। तो ये असल बात है। अल्लाह ताला यहां असल में, अब देखिए मक्की दौर है ना, फिर जहन में आ जाए मक्का का दूसरा दौर। अल्लाह के नबी एक नेमत थे, मक्का वालों ने उस नेमत की नाकदरी की। अमली शुक्र की बात है, ये मलू, अमल के साथ शुक्र करो, यानी जुबान से नहीं, दिल से भी नहीं, वो तो है। असल बात है कि इन नेमतों से अमल सवाले के इख्तमाम करो, तुम्हारी ये सब नेमतें अल्लाह के रास्तों में लग जाएं, खप जाएं अल्लाह के दीन को बढ़ाने के लिए, उसको सजाने के लिए। और तुम नेमत देने वाले को याद रखो, उसकी नाफरमानियों से बचो, फिर तुम्हें शुक्र का पता चलेगा। और ये जो बात आई है ना कि हजरत सुलेमान जिन्नों को सजा दिया करते थे, बाज कहते हैं कि उन जिन्नों को कयामत के दिन सजा दी जाएगी जिन्होंने हजरत सुलेमान की नाफरमानी की थी दुनिया में। बाज कहते हैं दुनिया में भी ऐसा ही था, एक अल्लाह ने फरिश्ता इनके साथ रखा हुआ था, जब कोई जिन इनकी नाफरमानी करता तो फरिश्ता आग का वो कोड़ा उस जिन को मारता जिसकी वजह से वो जल के भस्म हो जाता था। तो अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला में नेमतों की कदर की तौफीक अता फरमाए। रह गई बात तमसाल, तमसील, मिसाल, तो आप देखिए कि ये तस्वीरें गैर हैवानों की हो सकती हैं। बास कहते हैं कि अंबिया और सुलह की तस्वीर मस्जिदों में बनाई जाती थी ताकि उनको देखकर लोग भी इबादत करें, लेकिन हज़रत सुलेमान की शरीयत में अगर तस्वीर हो कि ना हो, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा शदीद अज़ाब में जो लोग होंगे ना, वो मुसव्विर होंगे। हम मुसव्विर को आज के दौर में क्या कहते हैं? आर्टिस्ट। और पूरा फन है, एक पूरा कॉलेज है, और इसमें तो एमए और पीएचडीज होती हैं, इकोनॉमिक्स कॉलेज और होम इकोनॉमिक्स कॉलेज, और वहाँ सिर्फ बुत बनाते हैं स्टैचूज। मेरे खुद अपनी कज़न थी ऐसे कॉलेज में, तो जो कुछ वो बताती थी हम बनाते हैं, तो फिर छुड़वा दिया था हमने एक साल के बाद उसको, कि क्या करना है, निरा शिर्क, बैठ के वो यूनानी आर्ट को फॉलो करते हैं और बैठ के हाथों से स्टैचूज बुत बनाते हैं, इसकी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। फिर इसी तरह जो लफ्ज़ है ना जीफान, ये जफनत उनकी जमा, लगन जवाब, जवाबिन जाबियत उनकी जमा हौज के मानों में, और कदूर किद्र की जमा, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं। आयत 14, फलम्मा कदैना अलैहिल मौता, फिर जब हमने इन पर मौत तारी कर दी, कौन फौत हुआ? नबी। तो नबी फौत हो सकते हैं? नबी की बेइज्जती तो नहीं है उसकी मरने के नाम से, यानी हजरत सुलेमान की मौत का वक्त आ गया। मा दल्लहुम अला मौतिही, तो ना बताया किसी ने उनको उसकी मौत के बारे में। जिन्नात से काम करवाते थे, जिन्नात को पता ही नहीं चला कि हजरत सुलेमान तो फौत हो चुके हैं, तो वो काम करते रहे। कहते हैं कि रिवायत है मशहूर कि हजरत सुलेमान जिन्नात की निगरानी के लिए अपने असा के सहारे खड़े होते थे, और वहां आके एक शीशे का कमरा बनाया था, खड़े हो जाते थे और जिन्नात देखते थे कि ये काम देख रहे हैं, काम करते थे। आसान हो जाता है दूसरा देखे तो काम करना। इसी में इनकी मौत का वक्त आ गया, अल्लाह ने इनकी रूह कब्ज की, लेकिन अगर ये वहां खड़े रहे तो जिन्नात को था कि जिंदा काम करते रहे, लेकिन इल्ला दाबतुल अर्दी, मगर जमीन के कीड़े ने, जिसको आप क्या कहते हैं, दीमक, उनकी लाठी को दीमक ने खोखला किया, और जू ही खोखला किया वो लाठी गिरी, हजरत सुलेमान गिर गए। तो जिन्नात को पता चल गया कि ये तो फौत हो चुके हैं, देखा तो भाग गए। आज भी कहते हैं कि वहां बैतुल मकदस, ये जो बैतुल मकदस है ये जिन्नात का बनाया हुआ है, हजरत सुलेमान ने बनवाया था जी। आज भी वहां जाके लोग, मैं किसी की बात सुन रही थी कि वो कह रहे थे कि आज भी जब आप उसको देखते हैं ना, तो आपको फील होता है कि ये अधूरा काम छोड़ दिया गया। कुछ जगह ऐसी हैं कि जैसे वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होती, आज भी मौजूद है, और उस इलाके में जिन्नात का जोर और उधर आना जाना ऐसी चीजें भी बहुत सारी हैं। हुआ क्या, फलम मखर्रा, फिर जब वो गिर पड़े, तबई या नतिल जिन्नो, तो जान गए जिन, बयान हो गया उन पे, खुल गया, ल अन अल्लौ का अनु यालमून अलगैबा, कि अगर वो होते गैब को जानने वाले, मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो इस जिल्लत के अजाब में पड़े ना रहते। क्या पता चला कि जिन्नात को ये बात पता चल जाती। हजरत सुलेमान के दौर में लोगों ने मशहूर किया था कि जिन गैब को जानते हैं, तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान की मौत को जरिया बनाया इस अकीदे को दुरुस्त करने का, और इस तरह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ये लोग काम करते रहे लेकिन उनको पता ही नहीं चला। तो ये हजरत सुलेमान और दाऊद का किस्सा था। सारे सबक में जो मेरे और आपके लिए बातें वो ये हैं कि हमने नेमतों को सही तरह इस्तेमाल करना है, अल्लाह ताला ने जो दे दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए उसी के रास्तों में लगाना है ताकि वो खैर से मामला सारे हों। इस्लाम दुनियावी तरक्की का दुश्मन नहीं है, शर्त यह है कि उसको इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। फिर इसी तरह से एक और चीज़ भी पता चलती है कि मुसलमान एक्टिव होता है, उसकी ज़िंदगी में एक भाग दौड़ होती है, वो सिर्फ बैठा ही नहीं रहता। ये जो असल न लहू ऐन अल-क़ितर है, इसके बारे में आता है कि पानी की तरह बहता था इनके सामने वो चश्मा जिसमें पिघला हुआ पीतल था, और ये उससे फिर बर्तन वगैरह, ये जो बड़ी बड़ी देगें और है ना, ये उससे बनाते थे। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं कि ये चश्मा इतनी दूर तक जारी हुआ जिसकी मुसाफत 3 दिन रात में तय हो। छोटा सा चश्मा नहीं था, बहुत बड़ा चश्मा था, और ये अर्ज़े यमन में था। मुजाहिद कहते हैं कि ये चश्मा सना यमन से शुरू हुआ और 3 दिन 3 रात की मुसाफत तक पानी के चश्मे की तरह जारी रहा। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल यह है कि जिन्नों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, आसानी की बात है कि इंसान अपने आप को रखे। और जो लोग महारी में ना हर्ब से है, इसका रूट गलत ना लिखिएगा, मीम नहीं है, रूट में हर्ब है। और ये वो जगह होती है मेहराब जहां बैठ के शैतान से जंग की जाए, यानी नफ्स के जिहाद की तरफ इशारा है कि शैतान कहता है सो जाओ तो आप इबादत करते हैं, तो घर का जो आला हिस्सा होता है उसको भी मेहराब कहते हैं, ऊंचा सा हिस्सा होता है। फिर इसी तरह एक और चीज़ है कि हज़रत सुलेमान और दाऊद को अल्लाह ने जो नेमतें दी थी उन्होंने उनको इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। आज के दौर में जब हिकमतें दी जाती हैं, नेमतें, तो अमूमन उसको यादगारें बनाने के लिए कायम किया जाता है। तस्वीर के इशू में बहुत सारी इश्कालात है, इसके लिए बेस्ट थिंग यह है कि अगर आप में से किसी को भी कोई इसका नॉलेज चाहिए हो तो आप islamqa.com पे जाएं, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, जो भी आप चूज़ करते हैं, वहाँ क्वेश्चंस होते हैं, यानी ऑलरेडी टॉपिक्स हैं कि इस्लाम तस्वीर के बारे में क्या कहता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए आसानी फरमाए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।